السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تربیت میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ اور عنصر جس کو ہم نے پیش کیا تھا وہ کیا تھا؟ لتسکنوا الیہا. لتسکنوا الیہا یعنی سکون. شادی کا ایک اہم مقصد سکون حاصل کرنا ہے کپلز کے درمیان اور فیملی کے درمیان. اگر یہ ہو جائے پھر انسان اپنے انسانی اور الہی سفر کو آسانی سے طے کر سکتا ہے. پھر بات یہ ہوئی کہ اس سکون کو ہم ڈیوائڈ کریں گے تین کیٹیگریز میں. سب سے پہلی کیٹیگری سکون کی دیداری سکون ہے, آرامش دیداری. یعنی جب میاں بیوی, زوج اور زوجہ جب ایک دوسرے کو نگاہ کرتے ہیں تو اس نگاہ کرنے کا نتیجہ سکون ہونا چاہیے. اب آرامش دیداری کے اندر اس کو بھی ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. اور پہلا حصہ جو لاسٹ ٹائم میں نے شروع کیا تھا لاسٹ ویک سیشن میں, وہ کیا تھا کہ انسان, زوج اور زوجہ پہلے 7 سیکنڈز کو غنیمت جانے, اس کو گولڈن جانے. اب اس میں روش کیا ہے؟ اس میں روش یہ ہے کہ زوج اور زوجہ, مثلا جب مرد آتا ہے آفس سے گھر میں تو فوراً زوجہ اس کو عدالت نہ لے جائے اور اس سے سوالات پوچھنا شروع نہ کر دے کہ تم کہاں تھے, کیوں اتنی دیر سے آئے, میں نے تمہیں کہا تھا 1 کلو ٹماٹر لے کے آنا, کیوں نہیں لائے تم, یہ ساری باتیں نہ کرے. صحیح ہے, میں نے کہا نا, فرسٹ آف آل سب سے پہلا کام کیا ہے, وہ اہم, وہ جو پہلے سیکنڈز ہیں اس کو غنیمت جانے. اور وہاں پر اس ارتباط, محبت آمیز ارتباط کو قائم کرے. اب یہاں پر 4 یا 3 روایتیں اسی موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ آپ خود دیکھیں کہ ائمہ اور اہل البیت علیہ السلام نے کس قدر اہتمام کیا ہے کہ زن اور زوج اور زوجہ جو ہیں وہ اس ارتباط کو قائم کر سکیں. دیکھیں, اسی 7 سیکنڈز یعنی پہلی ملاقات جب شوہر آتا ہے گھر سے, آفس سے, یا مثلا اگر بیوی بھی کہیں باہر سے آ رہی ہے, مثلا آپ اس کو یوں لے لیں کہ چند گھنٹوں بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں, تو یہاں پر جو شروع کے جو سیکنڈز ہیں اس حوالے سے روایات میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. اب یہ جو روایات ہیں, احادیث ہیں, یہ خود 3 سب ٹاپکس ہیں. ٹھیک, اب آپ دیکھیں پہلا ٹاپک کیا ہے, محبت سے نگاہ کرنا ایک دوسرے کو. یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی حدیث یہ ہے, امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زوج اور زوجہ ایک دوسرے کو محبت آمیز, محبت سے نگاہ کرتے ہیں تو یہ 2 نگاہیں ہیں. ٹھیک ہے, زوج کی ایک نگاہ ہے, زوجہ کی ایک نگاہ ہے, جو ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. اس صورت میں اگر محبت آمیز نگاہ کریں تو یہاں پر ایک تیسری نگاہ بھی ہوتی ہے, اور وہ ہے خداوند متعال کی, جو اس زوج اور زوجہ پر محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ نگاہ کرتا ہے. دوسری حدیث امام معصوم علیہ السلام کی اس بارے میں ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ جب زوج اور زوجہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں. کس طرح ہم جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, شیک ہینڈ کرتے ہیں, تو یہاں پر بھی یہ ہو. معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا, اگر جب ملاقات کی زوج اور زوجہ نے ایک دوسرے کے ساتھ اور ہاتھ ملایا, تو نتیجے میں خداوند متعال دونوں کے 10 گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا, گرا دے گا, اور 10 حسنات کو لکھے گا ان کے نامہ اعمال میں. تیسری حدیث اس حوالے سے, دیکھیں یہ بہت ہی مبتلا بے مسائل ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے آج کے نان اسلامک کلچر کے انفلٹریشن کی وجہ سے, ویسٹرن کلچر کے انفلٹریشن کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, خاص طور پر موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری دیکھیں خوبصورت چیزیں ہیں, اگر ہم اپنا لیں تو کتنا جنتی ماحول بن جائے گھر کا. اب آپ خود دیکھیں جو 3rd حدیث ہے وہ کس بارے میں ہے. ایک شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, मेरी बीवी जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं तो वो मुझे छोड़ने आती है दरवाजे तक, और जब भी मैं घर में वारिद होता हूं, दाखिल होता हूं, तो वो मेरे इस्तकबाल के लिए आती है। अब ये रिपोर्ट देता है अपनी बीवी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में। नबी अकरम यहां पर इस शख्स को जवाब में फरमाते हैं कि ए मर्द, तेरी खातून, तेरी बीवी खुदा की खिदमत गुजार है। इस नेकी की खातिर जो ये तेरे हक में अंजाम देती है, खुदावंद सुबहान शहीद का निस्फ और आधा सवाब तेरी बीवी के नामा आमाल में लिखेगा। अब आप मुझे बताएं, ये जो तीन हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी, पहली हदीस में क्या था कि खुदावंद मुताल की तीसरी निगाह किसकी होगी? खुदावंद मुताल की होगी। जब जौज और जौजा एक दूसरे को निगाह करते हैं, तीसरी निगाह वहां पर खुदा की होगी, जो कि रहमत की निगाह होगी। दूसरी रिवायत में क्या था, 10 गुनाहों को डिलीट किया जाएगा, गिराए दिया जाएगा, और 10 हसनात को लिखा जाएगा। तीसरी रिवायत में क्या फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शहीद की जिंदगी या शहीद का निस्फ सवाब बीवी के नामा अमल में, नामा आमाल में लिखा जाएगा। अब ये जो हदीसें हम सुनते ना कि ये होगा वो होगा, हमारे जहन में क्या आता है कि ये सब आखिरत से मुताल्लिक है। सवाब क्या है? आखिरत से मुताल्लिक है। सवाब तो हमें उखरवी और आखिरत की जिंदगी में मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाब इससे पहले कि आपको आखिरत में मिले, जिंदगी इसी दुनिया में मिलेगा। अब किस सूरत में मिलेगा सवाब, ये एक अलग टॉपिक है। सवाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ये आप हतमन याद रखें कि सवाब का जो कॉन्सेप्ट इस वक्त हमारे लोगों में पाया जाता है, वो असलन एक नादुरुस्त कॉन्सेप्ट है। दो बड़े कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं सवाब के, वो ये जो कि सही नहीं है। रिवायात को अगर आप पढ़ें, अहादीस को आप पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह यही अहादीस अब किताबें उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं। उन्हीं अहादीस में यही लिखा लिखा गया है कि, अब लिखा गया है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जो गलत कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये, एक कॉन्सेप्ट क्या है कि सवाब यानी आखिरत में मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलने वाला, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्या गलत कॉन्सेप्ट है कि सवाब जो है वो एक अट्रैक्शन के लिए है, जज्जाबियत के लिए है, कि मैं मसलन अगर आइम्मा ने फरमाया है कि अगर फॉर एग्जाम्पल 10 गुनाहों को डिलीट किया जाएगा, 10 हसनात को लिखा जाएगा, ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, ताकि घर का माहौल दुरुस्त हो सके, घर का माहौल अच्छा बन सके, मियाँ बीवी के रवाबित आपस में जो है वो राबता आपस में ठीक हो सके, ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए। ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। सवाब दुनिया में मिलेगा, किस सूरत में मिलेगा ये कभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको कोई एड्रेस दूं तो आप 7 सेशंस इसी यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं, इंसानी आमाल का निजाम। जब तक हम अपने आमाल के सिस्टम को नहीं समझेंगे, हमें सवाब समझ में नहीं आएगा यहां पर, तो वो 7 सेशंस की तरफ रुजू किया जा सकता है। अब ये तीन हदीसें आपके सामने पेश की, जो कि पहली मुलाकात, चंद घंटों बाद जब पहली मुलाकात हो रही है, तो आप देखें मोहब्बत आमेज निगाह, शेक हैंड करना, हम बच्चों को कहते हैं ना कि शेक हैंड करो, हम एक दूसरे से तो करें, मियाँ बीवी एक दूसरे से शेक हैंड तो करें। थर्ड, इस्तकबाल करना, दरवाजे तक छोड़ना है। मोबाइल एंड सोशल मीडिया की वजह से ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। मैं वाकई कभी मोबाइल के बारे में अगर खुदा ने चाह कोई सेशन करूंगा, वाकई इस मोबाइल ने तबाह कर दिया है, रिलेशनशिप्स तबाह हो रही हैं इस मोबाइल की वजह से। अब इसी छोड़ने के हवाले से, मसलन अगर वो शख्स कहता है कि मेरी बीवी हमेशा मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती है, आज क्या होता है? आज ऐसा नहीं, आज यानी बहुत यानी नजर नहीं आता। ये वो सुन्नती बीवियां होंगी जो ये काम करती होंगी, जिनको शायद मोबाइल का ज्यादा शौक नहीं है। देखिए, मोबाइल बुरी बात नहीं है, मोबाइल से गलत इस्तेफादा बुरी बात है। ये कि अगर शौहर ऑफिस के लिए निकल रहा है, या घर के किसी या बाहर के किसी काम के लिए निकल रहा है, ठीक, अब बीवी वहां बैठी हुई बेड पे, मोबाइल उसके हाथ में, सोशल मीडिया व्हाट्सएप उसके हाथ में, शौहर उसको खुदा हाफिज कह रहा है, बीवी ठीक है ओके टमाटर लेके आना, रोटी लेके आना, अब वो उसको ना मोबाइल को देख रही है और मोबाइल को देखते देखते खुदाफिस कर रही है। इससे क्या घर का माहौल बनेगा, इससे क्या घर में सुकून आएगा, कोई सुकून नहीं आएगा घर में। फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शौहर जो है वो, फिर आप ये सवाल करती हैं कि क्यों मेरा शौहर रात को देर से घर पे आता है। अच्छा, आरामिश दीदारी, सुकून देखने के हवाले से, ये इसका हमने पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया। इसी का सेकंड हिस्सा और तकसीम क्या है, वो है लिबास पहनने के हवाले से तवज्जो करना, खुसूसी तवज्जो करना। मर्द का भी यहां पर मुतवज्जे होना, औरत का भी यहां मुतवज्जे होना, कपड़ों के हवाले से, पहनने के हवाले से, पोशाक के हवाले से। अब यहां पर देखें, यहां पर कोई ये ना कहे मुझे कि फॉर एग्जाम्पल यार आप तो सिर्फ लेडीज की मुश्किलात बता रहे हैं, बीवियों की मुश्किलात बता रहे हैं, आप कब शोहरों की मुश्किलात बताएंगे, वो भी आएगा। सही है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक्स और गलतियां शोहरों से भी होती हैं और बीवियों से भी होती हैं, हम दोनों की तरफ आएंगे। अब यहां पर आप देखें, कपड़े और लिबास पहनने के हवाले से, जो जाहिरी लिबास जब बीवी पहनती है, शौहर पहनता है, यहां पर कई मिस्टेक्स और गलतियां होती हैं। अब आप देखें, सबसे पहली मिस्टेक्स मैं लेडीज की बताऊंगा और बीवियों की बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स घर में पेश आती हैं। अब जब मर्द और शौहर आता है ऑफिस से, घर में आता है, तो सबसे पहली निगाह जब उसकी बीवी पर पड़ती है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी तो एक बिल्कुल नौकरानी की तरह और मासी की तरह उसने कपड़े पहने हुए। सही, अब जब शौहर इस तरह देखता है अपनी बीवी को, तो उसके जहन में अब वो बाहर ऑफिस से आ रहा है, अब रास्ते में उसको खूबसूरत खवातीन नजर आ रही हैं जिन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं। अब जब वो घर पे आता है, तो उसकी बीवी जो है वो मासियों की तरह ड्रेस्ड अप होती है, तो उसके जहन में क्या आएगा, आया उसको सुकून मिलेगा, आया लितस्कुनु इलैहा का एलिमेंट क्या यहां पर पेश आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या सुकून मिलेगा ऐसी बीवी को देखकर। अब मैं शौहरों पे भी आऊंगा कि शौहर क्या मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर हम बीवियों की मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं कपड़ों के हवाले से। मैं एक सवाल पूछता हूं, जितने भी वाइफ्स अगर मुझे यहां सुन रही हैं, तो मैं इनसे सवाल करूंगा आपसे, वो ये कि लास्ट कब आपने ऐसे कपड़े पहने थे जो आप मसलन फंक्शंस के लिए, बड़े प्रोग्राम्स के लिए पहनती हैं, घर में ऐसे कपड़े कब पहने थे वाइफ्स ने। अक्सर वाइफ्स क्या कहेंगी कि बहुत कम होता है कि हम बाहर के कपड़े, मसलन किसी ने दावत दी है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी जश्न के प्रोग्राम में जाना है, किसी की शादी के प्रोग्राम में जाना है, अब वो जो कपड़े वहां पहने जाते हैं, लास्ट टाइम कब आपने वो कपड़े घर में पहने थे अपने हस्बैंड के लिए, ये एक सवाल है। अब इसका जवाब आप खुद तलाश करिए, आप खुद अपने आप से पूछें और डेट बैक टाइमलाइन तारीख में जाएं और चेक करें कि ये कब हुआ था। देखिए, ये बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि हमारा माहौल एक ऐसा बन चुका है कि हमें बाहर जब जाना है तो हमें मेकअप करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, लेकिन जब घर में होना है तो मासियों की तरह ड्रेस्डअप होके रहना है। अब यहां पर फिर होता क्या है, इसका एक आफ्टर इफेक्ट क्या है, इसका नतीजा ये होता है कि फिर शौहर रात को देर देर से घर पे आता है। अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करें कि क्यों घर का माहौल, क्यों शौहर और बीवी के दरमियान रिश्ता कमजोर होता है, खुद इंटरनेट पे अगर आप इसी बारे में रिसर्च करें, तो एक फैक्टर आपको यही मिलेगा, एक रीजन आपको यही मिलेगा कि बीवी का ड्रेस अप होना सही नहीं है, बीवी का लिबास पहनने के एतबार से उसकी असलन तवज्जो नहीं है कि शौहर, मुझे पता है अगर शौहर 8 बजे घर पे आएगा तो 7 o'clock मैं अपने आप को रेडी करके रखूं, 7:30। तो इन चीजों की तरफ अगर हम तवज्जो नहीं करेंगे, फिर हम ये सोचते हैं कि मेरा शौहर क्यों घर पे देर से आता है, तो भी ये तो फिर तभी तभी नतीजा है, दिस इज अ नेचुरल रिजल्ट, ऐसा ही होना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि शौहर साहब क्या मिस्टेक करते हैं, और उस हवाले से भी हम एक रिवायत लेके आएंगे, इमाम शायद इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कि एक रिवायत है वो भी हम लेकर आएंगे कि वो रिवायत हमें ये बताएगी कि मर्दों को क्या करना है कपड़ों के हवाले से। ठीक, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल बैत अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम इमाम हमारे और हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर आप तमाम इन तमाम आइम्मा की जिंदगियों को देखें और हदीसों को देखें तो फरावान हदीसें मौजूद हैं फैमिली से रिलेटेड, फैमिली मसाइल के हल से रिलेटेड। हमें कहीं बाहर किसी साइकोलॉजिस्ट को किसी काउंसलर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अगरचे बाज़ औक़ात उनकी तरफ रुजू करना भी लाजमी है, लेकिन खुद अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात खुद एक सोल्यूशन है। मैंने आपके सामने आज तीन रिवायात पेश की और तीनों प्रैक्टिकल हैं, तीनों आज के जमाने में प्रैक्टिकल रिवायतें हैं। तो कोशिश करें कि हम टेक्नोलॉजी से सही इस्तेफादा करें, सुए इस्तेफादा ना करें, अच्छा इस्तेफादा करें, और जहां पर हमें मोबाइल साइड पे रखना है उसको साइड पे रखें। अब मोबाइल के हवाले से बहुत ज्यादा दर्द दिल है मेरे दिल में, लेकिन इंशाल्लाह कभी अलग से सेशन इसके बारे में हम करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।